ये आकाशवाणी है, अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतवर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहा है। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS के विश्वभर के 1,00,000 स्वयंसेवकों की सेवा के सम्मान में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित कार्यकर स्वर्ण महोत्सव को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। सेवा के सिद्धांत को भारतीय संस्कृति का अंतर्निहित अंग बताते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयंसेवकों से आग्रह किया कि वे समाज की बेहतरी के लिए संकल्प पूरे कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए BAPS के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि BAPS के व्यापक मानवीय कार्यों के कारण विश्व में भारत की ताकत और प्रभाव में वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने वैश्विक स्तर पर देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रसार करने के लिए BAPS के योगदान का उल्लेख किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि TB यानी तपेदिक मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। श्री नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला में 100 दिन के TB उन्मूलन अभियान की शुरुआत करने के बाद कहा कि वर्ष 2025 तक देश को TB मुक्त बनाने में ये अभियान मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तपेदिक से अधिक प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ 100 दिन के विशेष अभियान की शुरुआत से तपेदिक के खिलाफ देश की लड़ाई और मजबूत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि देश में रोगियों को दोगुनी सहायता, जन भागीदारी, नई दवाओं, प्रौद्योगिकी के उपयोग और बेहतर नैदानिक उपकरणों के साथ बहुआयामी तरीके से तपेदिक बीमारी से लड़ रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवाओं से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वैश्विक संघर्षों को हल करने के लिए नवीन और भागीदारी पूर्ण कूटनीति का आह्वान किया। यूक्रेन संघर्ष का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के कूटनीतिक प्रयास दोनों ओर के नेताओं के साथ हैं। दोहा फोरम में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संवाद की आवश्यकता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ आज सदन में विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव गिर गया। राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली पार्टी ने मतदान के समय कार्यवाही का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 300 सदस्यों वाले सदन में से 200 सदस्यों की आवश्यकता होती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने वाली विपक्षी पार्टियों के कुल 192 सदस्य हैं। महाभियोग प्रस्ताव बिना मत विभाजन के ही गिर गया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को फिलहाल सीरिया की यात्रा न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने सीरिया में भारतीय नागरिकों से राजधानी दमिश्क स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है। लोगों को तुरंत सीरिया छोड़ने की सलाह भी दी गई है। इस बीच सीरिया के विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के भीतरी हिस्से में अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह हिस्सा सरकार के कब्जे में है। इससे पहले विद्रोही आसपास के शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा है कि दूरदर्शन का वेब OTT प्लेटफॉर्म परिवार के सभी सदस्यों के लिए समग्र और साफ सुथरा मनोरंजन प्रदान करेगा। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि वेब के माध्यम से लोगों को नए कार्यक्रम के साथ दूरदर्शन के पुराने और लोकप्रिय कार्यक्रम देखने का भी अवसर मिलेगा। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 128 रन बना लिए थे। भारत अभी भी 29 रन से पीछे है। ऋषभ पंत 28 और नीतीश कुमार रेड्डी 15 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 337 रन बनाए। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच आज 10वीं बाजी भी ड्रॉ रही। दोनों खिलाड़ी 5-5 अंक लेकर बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।